नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रताप सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश राव। राकेश राव जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
बहुत बहुत शुक्रिया।
कार्यक्रम शुरू करने से सबसे पहले नजर डालते हैं स्पोर्ट्स स्कैन की हेडलाइंस पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र 65 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर, कर्नाटक दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पर। बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 के शेष सत्र को एक सप्ताह के लिए तत्काल निलंबित करने की घोषणा की। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी और उन्नति हुड्डा ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष और महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। और विश्व स्क्वाश चैंपियनशिप 2024-25 का आगाज आज से अमरीका के शिकागो में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र 65 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है, जिसमें 24 स्वर्ण पदक शामिल हैं। महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने उमदा प्रदर्शन से राज्य के खाते में 21 रजत और 20 कांस्य पदक भी जोड़े हैं। कर्नाटक 13 स्वर्ण पदक सहित 38 पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है, जबकि राजस्थान 11 स्वर्ण सहित 20 पदकों के साथ पदक तालिका में तीसरे स्थान पर है। तो राकेश जी, सबसे पहले तो महाराष्ट्र के प्रदर्शन पे नजर डालते हैं। लगातार पहले दिन से महाराष्ट्र पदक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है, किस तरह से देखते हैं इसको?
देखिए, महाराष्ट्र ने, अगर आप जब भी देखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, जब से हुआ है अभी तक, हर बार या तो वो फर्स्ट आए या सेकेंड आए, और सिर्फ दो बार सेकेंड आए, बाकी हर बार फर्स्ट आए हैं। सबसे ज्यादा उन्हीं के पास रहते हैं मेडल। और जब वो दो बार सेकेंड आए, उसमें से एक बार जब वो सेकेंड थे, लेकिन मेडल्स उनके सबसे ज्यादा थे। तो मतलब आप देखिए क्या डोमिनेशन है उनकी, कि लगातार बहुत कंसिस्टेंटली उन्होंने इस लेवल पे, अंडर 17 हो, अंडर 21 हो, इस लेवल पे जो टैलेंट उस स्टेट में है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके पास पूरा जो एक सिस्टम है, ये उसको सैल्यूट है कि वो टीम ऐसी नहीं है कि हरियाणा एक और अच्छा स्टेट है जो कि यूथ को इंस्पायर करने के लिए उनके पास बहुत सारे स्कीम्स हैं। वहाँ पे महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। इसके बावजूद एक जो एक बहुत ही ज़माने से स्पोर्ट्स का जो वहाँ जो कल्चर रहा है, वो उन्होंने बिल्कुल वैसे ही रखा है, बरकरार रखा है इतने सालों में। चाहे तो कर्नाटका एक और अच्छा फोर्स है, जिसको कि हमने देखा है कि स्विमिंग में और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटका इन्हीं का मुकाबला होता है। तमिलनाडु का भी आ जाए तो आ जाए, नहीं तो तीसरा चौथा कोई स्टेट नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जहाँ पे कि मेडल्स ज़्यादा हैं, जैसे मान लीजिए जिमनास्टिक्स है, एथलेटिक्स है और स्विमिंग है। ये तीन जो मेन इवेंट्स होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा मेडल्स हैं। अगर आपको किसी भी गेम्स में डोमिनेट करना है, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो, ओलंपिक्स हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, ये तीन में अगर आपके अच्छे एथलीट्स हैं, आप मेडल्स टैली में ऊपर ही दिखेंगे हमेशा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है महाराष्ट्र को और कर्नाटका को। और एक स्टेट और है हरियाणा, जिसने कि ट्रेडिशनली अच्छा किया है, फिलहाल थोड़ा पीछे है वो, लेकिन हाँ अभी जो भी, बिकॉज एज अ होम स्टेट भी हम देखते हैं कि जो होस्ट होता है वो भी नॉर्मली अच्छा करता है, लेकिन आज देखने को ये मिला कि कम से कम बिहार ने अपना पहला मेडल जीता। किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि बिहार कोई नंबर वन आएगा या कुछ ऐसे होगा, लेकिन हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप है कि बिहार जैसे स्टेट को हम देखें, क्योंकि द होल आइडिया ऑफ खेलो इंडिया गेम्स जो है वो ये है कि हम इस गेम्स को पूरे मतलब देश में लेके जाएं, और जो पिछड़े हुए जो स्पोर्ट्स वाइज जो है पिछड़े हुए जो राज्य हैं, उनको मौका मिले कि अपने एनवायरनमेंट में जहां पे वो कंफर्टेबल हैं, वहां पे अपने लोगों के सामने परफॉर्म करें।
जी, प्रतियोगिता का छठा दिन आज भी काफी रोमांच भरा रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज के दिन रग्बी, तैराकी, टेबल टेनिस, सेपक टाकरा, शूटिंग, खो खो जैसे खेलों की स्पर्धाएं हुई, जहां मेडलों के लिए खिलाड़ियों ने अपना पूरा जोर मैदान पे झोंक दिया।
खो खो में ओडिशा ने मौजूदा चैंपियन महाराष्ट्र को कड़ी टक्कर के बाद शिकस्त दी। ओडिशा की ओर से समारिका साहू ने अपने दमदार प्रदर्शन से अपनी टीम को सोना दिलाया। बालकों के वर्ग में ठीक उलट मुकाबला देखने को मिला। ओडिशा की टीम स्वर्ण पदक के करीब आकर चूक गई। महाराष्ट्र के खिलाफ हार कर उसे रजत से संतोष करना पड़ा। इस मुकाबले में कर्नाटक और पंजाब ने कांस्य पदक जीता। इधर वॉलीबॉल में बालक टीम के प्रदर्शन के बूते जम्मू कश्मीर ने अपना पहला पदक स्वर्ण के रूप में जीता। जम्मू कश्मीर ने इस मुकाबले मुकाबले में उत्तर प्रदेश को हराया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
इधर दिल्ली में भी खेली गई निशानेबाजी की स्पर्धाओं में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। सुनते हैं अभिषेक कपिल की एक रिपोर्ट।
डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में निशानेबाजी की प्रतियोगिताएं समापन की ओर हैं। आज इन स्पर्धाओं का दूसरा दिन रहा। आज हुए 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम युवा वर्ग श्रेणी के मुकाबले में महाराष्ट्र के पार्थ राकेश माणे और शांभवी शरण क्षीरसागर ने सबको पछाड़कर स्वर्ण पदक जीता। इस संस्करण में निशानेबाजी में शांभवी का ये दूसरा पदक है। कर्नाटक के हृदय श्री कोंडूर और नरेन प्रणव ने रजत पदक जीता, जबकि बिहार के दिव्यश्री और रुद्र प्रताप सिंह को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में निशानेबाजी में ये बिहार का पहला पदक है। आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत में शांभवी ने कहा कि प्रतियोगिता कठिन थी, लेकिन उनके कोच के मार्गदर्शन ने उन्हें जीतने में मदद की। बाइट शांभवी। दूसरी ओर पार्थ ने खेलो इंडिया योजना की सराहना की और कहा कि इससे खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ कोचों से उचित मार्गदर्शन मिलता है। बाइट पार्थ। वहीं राष्ट्रीय राजधानी कल से शुरू होने वाली जिम्नास्टिक स्पर्धाओं की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये स्पर्धाएं इंदिरा गांधी स्टेडियम में होंगी, जिनका समापन 14 मई को होगा। अभिषेक कपिल।
एक तरफ उड़ीसा और महाराष्ट्र, वापस हमने वहीं पे आते हैं घूम के। खो-खो में दोनों का दबदबा देखने को मिला।
बिल्कुल।
किस तरह से देखते हैं दोनों के प्रदर्शन?
वो बहुत सरप्राइजिंग है कि उड़ीसा ने महाराष्ट्र को हराया, बिकॉज महाराष्ट्र खो-खो में ट्रेडिशनली आप देखें नेशनल्स पे हर लेवल पे, जूनियर, सब जूनियर, सीनियर, तीनों लेवल्स पे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उड़ीसा का खो-खो में उतना कोई बहुत बड़ा स्टैंडिंग हम नहीं देखते हैं, और 34-31 बिल्कुल मतलब बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट। लेकिन हाँ, उड़ीसा के लिए ये जो मेडल है, ये मेरे ख्याल से यादगार रहेगा सबके लिए।
जी बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 के शेष सत्र को एक सप्ताह के लिए तत्काल निलंबित करने की घोषणा की है। ये निर्णय भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बाद आया है। बीसीसीआई ने आज एक बयान में कहा कि संदर्भित अधिकारियों और हितधारकों से परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है और जल्द ही आने वाले संशोधित कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी। इससे पहले कल शाम पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच को एहतियात तौर पे बीच में ही रद्द कर दिया गया। इस निर्णय को किस तरह से देखा जाए राकेश जी? बीच में ही मैच को रोकना पड़ा और फिर उसके बाद अभी तक बहुत कुछ तस्वीर स्पष्ट नहीं है, आगे की प्रतियोगिता को आप किस तरह से
देखिए? पहली बात यह कि कल जिस अंदाज में ये गेम को रोका गया, मेरे ख्याल से सही डिसीजन था वो। क्योंकि देखिए, एक तरफ आप कहते हैं कि चंडीगढ़ में फिर उसके आसपास जितने भी हैं जिन्होंने जगह थी वहाँ सब आप कह रहे हैं कि ब्लैकआउट है, लेकिन आप धर्मशाला में आप फ्लडलाइट नहीं जला सकते। अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि ये कोई बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है, क्योंकि देखिए हम अभी वी आर एट वॉर। ये ऐसे में अगर आप देखें कि सैटेलाइट पिक्चर्स सबके पास अवेलेबल हैं, तो आप कभी भी कोई भी चीज़ ऐसे आप जो है जिससे कि आपके लोगों को या आपकी जो यू नो प्रॉपर्टी है, जान माल, किसी को भी हानि हो, ये आप नहीं चाहते हैं। तो ये डिसीजन हालांकि थोड़ा लेट लिया गया, लेकिन लिया गया। और जो आज जो ये डिसीजन लिया गया कि हम आईपीएल को सस्पेंड कर रहे हैं एक हफ्ते के लिए, मेरे ख्याल से ये सिर्फ अभी एक प्रिकॉशनरी वो है, एक हफ्ता मेरे ख्याल से वो सिचुएशन को देखते हुए ये निर्णय लिया जाएगा कि एक हफ्ते बाद रिज्यूम हो पाएगा कि नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो डिसीजन लिया गया बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि देखिए इंडिया इसलिए गेम नहीं रोका, इंडिया ने मतलब ये वाला टूर्नामेंट इसलिए नहीं रोका कि आपके पास और कोई जगह नहीं है। इंडिया बहुत बड़ा देश है, आप साउथ में ले जा सकते थे, आप इसको ईस्ट में ले जा सकते थे, आपके पास स्टेडियम, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी की कमी नहीं है। और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में जितने फ्रेंचाइजीज जितने भी हैं, ओनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो लोग इस बात से भी एग्री करते हैं कि हम इसको कहीं और ले जा सकते हैं। ओवरसीज प्लेयर्स को ये कंसर्न था, उनके जो यू नो घर वाले हैं, उनके जो कंट्री के लोग हैं, वो सबको था, एंक्शियस थे लोग थोड़े बहुत, लेकिन आपने ये जो डिसाइड किया कि हाँ हम अभी उसको होल्ड कर रहे हैं और जब भी कभी सूटेबल सिचुएशन आएगी, क्योंकि देखिए आप एक स्पोर्ट्स लवर हो सकते हैं, आप एक गवर्निंग यू नो लाइक एक पूरे कंट्री के क्रिकेट की गवर्निंग आप यू नो एक एसोसिएशन है, बॉडी है, आपको ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि ये सब ठीक है, हम स्पोर्ट्स है, पैसा है, सब कुछ है, फॉलोइंग है, लेकिन इससे पहले आप भारतीय हैं एंड इंडिया इज एट वॉर। तो आपको इंडिया को के बारे में पहले सोचना है, बाकी सब चीज़ें पीछे हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से ये बीसीसीआई का बड़ा कमेंडेबल डिसीजन
जी, बिल्कुल एक बहुत सोचा समझा हुआ निर्णय जो बिल्कुल सही समय पे आया है। अब बात करते हैं बैडमिंटन की। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी और उन्नति हुड्डा आज ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष और महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी और उन्नति हुडा ने ताइपे ओपन के अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। विश्व में 44वें नंबर के खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में कनाडा के 7वीं वरीयता प्राप्त ब्रायन यंग को कड़े मुकाबले में 16-21, 21-19 और 21-14 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। आयुष ने दूसरे दौर में भारत के ही वरिष्ठ खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत को हराया था। आयुष ने पहले दौर में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के उप विजेता ली चिया हाउ को भी हराया था। महिला सिंगल्स में उन्नति हुडा ने 52 मिनट तक चले संघर्षपूर्ण क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की हंग यी टिंग को 21-8, 19-21, 21-19 से हराया। सेमीफाइनल में उन्नति का सामना जापान की तोमोका मियाजाकी से होगा। इस बीच पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में भारत के तरुण मन्ने पल्ली को इंडोनेशिया के मोहम्मद जकी उबैदुल्ला से हार का सामना करना पड़ा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
क्या कहेंगे दोनों भारतीय ये युवा खिलाड़ियों की इस प्रदर्शन पे, और आगे सेमीफाइनल में कितनी चुनौती इन खिलाड़ियों को देखने को मिल सकती है?
देखिए, पहली बात ये है कि ये जो टूर्नामेंट है ये सुपर 300 टूर्नामेंट है, ये बहुत स्ट्रांग टूर्नामेंट नहीं है। लेकिन जिस दौर से इंडियन बैडमिंटन आज गुजर रहा है, हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो इससे जो हायर टूर्नामेंट्स हैं, सुपर 500, सुपर 750, सुपर 1000, उसमें हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं सिंगल्स में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे उन्नति है, उन्नति बहुत यंग है अभी, और यू नो लाइक शेट्टी भी वैसे ही हैं, काफ़ी अभी मतलब उभरते हुए दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कि ऐसे रिजल्ट्स की बहुत ज़रूरत है। और जैसे शेट्टी खेल रहे हैं अभी, जो कि श्रीकांत जो पहले वर्ल्ड नंबर 1 थे, अगर आप एक प्रॉपर टूर्नामेंट में अगर आप उन्हें हरा देते हैं तो वो जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है, तो उस टूर्नामेंट को, उस कॉन्फिडेंस को लेकर जब आप आगे चलते हैं, ये उनके लिए अभी पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छा है। और क्योंकि आप अभी उस हाई लेवल के लिए भी आप तैयार भी नहीं हैं, तो ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप अपनी एक लंबी जो आपकी जो यू नो जर्नी है वो उस पर आप आगे अग्रसर हो सकते हैं।
जी बिल्कुल, शेट्टी ने इसके पहले किदांबी श्रीकांत को भी बाहर का रास्ता दिखाया इस टूर्नामेंट से। और अब बात करते हैं स्क्वाश की। विश्व स्क्वाश चैंपियनशिप 2024-25 का आगाज आज से अमेरिका के शिकागो में हो रहा है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
चैंपियनशिप में लोगों की नजरें अनाहत सिंह पर होंगी। अनाहत इस प्रतियोगिता में भारतीय अभियान की नेतृत्व करेंगी। विश्व वरीयता क्रम में 62वें और भारत की नंबर 1 खिलाड़ी अनाहत का सामना पहले दौर में दुनिया की 28वें नंबर के खिलाड़ी अमेरिका की मरीना स्टेफनोनी से होगा। महिला वर्ग में वे एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। वहीं पुरुष वर्ग में भारत के 4 खिलाड़ियों की टीम प्रतियोगिता में चुनौती पेश करेगी। इनमें अभय सिंह, वीर चोटरानी, रमित टंडन और विलावन सेंथिल कुमार शामिल हैं। चोटरानी का सामना इंग्लैंड के डेक्लॉन जेम्स से होगा। रमित टंडन का मैच जापान के रेयुनो सुके से होगा। अभय सिंह स्विट्जरलैंड के निकोलस म्यूलर से खेलेंगे, जबकि विलावन का सामना विश्व चैंपियन डिएगो एलियास से होगा। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 17 मई तक चलेगी। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
अनाहत पे सबकी नजरें टिकी होंगी, स्वाभाविक है। कितना अहम होने वाला है उनके लिए ये टूर्नामेंट?
देखिए, उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखिए वर्ल्ड नंबर 62 हैं और 28 के साथ खेल रही हैं, तो नेचुरली आप अगर इंडियन अगर 28 होता और उसका मुकाबला 62 से हो रहा होता, तो आप कहते कि भाई 28 वाली हमारी लड़की है, वो फेवरेट है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अनाहत अभी बहुत यंग है, रिजल्ट्स अभी आएंगे उनके लिए। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो भी गेन है उनका, उनको यहाँ पे सिर्फ जीत हासिल होनी है, यहाँ पे कुछ हारने नहीं आई हैं। जो मिलेगा वो उनको एक गेन है उनके लिए बहुत बड़ा। एक तो एक्सपीरियंस होता है, दूसरा ये कि आप अपने से अच्छे खिलाड़ी से आपको खेलने का मौका मिलता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि हमारी टीम मतलब पहले जैसे थे यू नो सौरभ घोषाल के टाइम पे, कम से कम हमें ये उम्मीद थी कि क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक कोई पहुंच देगा। अभी वो रियलिस्टिक उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इसमें आप जितनी भी आगे जा सके वो आपके लिए फायदेमंद है।
जी बिल्कुल। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय फिर मुलाकात होती है। राकेश जी, आप आए, हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया।